नमस्कार भारत, तारीख 28 सितंबर दिन सोमवार, मैं हूं विनीत खरे। फेसबुक मुख्यालय में माता पिता पर पूछे गए सवाल पर नरेंद्र मोदी हुए भावुक।
बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया।
उधर विपक्ष नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों से खुश नहीं। आर के सिंह के बाद एक और भाजपा सांसद बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज।
अरे अश्वनी कुमार चौबे के बेटा को मिला, सीपी ठाकुर के बेटा को मिला, नरेंद्र सिंह के दो दो बेटा को मिला। हम लोगों के भी चाहते कि हम लोगों का भी बेटा को मिले।
साथ में पाकिस्तान डायरी और समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, समीर आत्मज मिश्र से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेसबुक के मुख्यालय में मार्क जकरबर्ग के साथ फेसबुक चैट में कहा है कि वे भारत को 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। मोदी से वार्ता शुरू करते हुए जकरबर्ग ने कहा कि फेसबुक के इतिहास में भारत का अहम योगदान है। उन्होंने बताया कि स्टीव जॉब्स के कहने पर उन्होंने भारत की यात्रा की थी और दुनिया को बेहतर ढंग से समझा था। मार्क जकरबर्ग ने 13 सितंबर को मोदी के साथ फेसबुक टाउन हॉल का ऐलान किया था। स्पेन में आज़ादी समर्थक दलों ने कैटेलोनिया क्षेत्र में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। करीब 90% मतों की गणना हो चुकी है, जिसमें प्रमुख अलगाववादी गठबंधन और एक छोटी पार्टी को अब तक 135 सदस्यीय क्षेत्रीय संसद में 72 सीटें मिल चुकी हैं। इन दलों का कहना था कि बहुमत मिलने पर ये 18 महीने के भीतर खुद को स्पेन से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं। चुनाव से ठीक पहले इन दलों का कहना था कि वे इस चुनाव को स्पेन से आज़ादी के लिए जनमत संग्रह के रूप में देख रहे हैं। अमरीका यात्रा के आखिरी दिन पोप फ्रांसिस ने उन बच्चों से मुलाकात की जो ईसाई पादरियों के कथित यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुके हैं। फिलाडेल्फिया में बच्चों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने युवाओं की सुरक्षा का भी वादा किया। बच्चों के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहारों को गोपनीय नहीं रखा जा सकता और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि उनकी ठीक से देखरेख सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इन मामलों में जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पोप फ्रांसिस के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान की सेना का दावा है कि उसके सैनिकों ने बीते दो दिनों में 130 से ज्यादा इस्लामिक स्टेट लड़ाकों को मार दिया है। खबरों के मुताबिक 85 लड़ाके रविवार को हुई झड़पों में मारे गए। इस्लामिक स्टेट ने पूर्व प्रांत नांगरहार में बड़ा हमला किया था, जिसके जवाब में सैन्य बलों ने कार्रवाई की है। रिपोर्टों के मुताबिक दो सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं। अभी इस्लामिक स्टेट की ओर से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र में चर्चा के बाद सीरिया संकट को सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज इसी मुद्दे पर अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने वाले हैं। पुतिन ने कहा कि सीरियाई राष्ट्रपति के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों को अमरीका की ओर से हथियार मुहैया कराना न सिर्फ गैरकानूनी था, बल्कि इसका उल्टा प्रभाव भी हुआ है। पुतिन ने कहा कि इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों से लड़ने के लिए एक संयुक्त ढांचा बनाए जाने की जरूरत है। मेक्सिको में एक जज ने 2 साल पहले हुए 13 लोगों के अपहरण और उनकी हत्या के लिए 3 लोगों को 500 साल से भी ज्यादा की सजा सुनाई है। जज ने इन लोगों को $3,00,000 से ज्यादा के जुर्माने की भी सजा सुनाई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे।
गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा।
ये थे बेहद भावुक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने माता पिता के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। फेसबुक मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन खुद फेसबुक प्रमुख मार्क जकरबर्ग ने किया और नरेंद्र मोदी के लिए 40,000 से ज़्यादा सवाल दुनिया भर से आए थे। इस कार्यक्रम में हमारे साथी ब्रिजेश उपाध्याय भी मौजूद थे। सीधे चलते हैं उनके पास। ब्रिजेश, इन भावुक क्षणों को आपने भी देखा, माहौल को बयां करें और क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई इस कार्यक्रम में?
जी विनीत, जैसा कि आपने वो उनकी वो आवाज़ सुनवाई लोगों को, वो सुनते ही जैसे लग रहा था कि काफ़ी रुक रुक करके वो बोलने लगे और लगने लगा था कि वो काफ़ी भावुक हो रहे हैं। और जब आखिरी बात उन्होंने बिल्कुल गले रुंधे हुए गले से कही, तो मैंने बहुत लोगों की आंखों में आंसू देखे वहाँ पर, और यहाँ तक कि कुछ पत्रकारों की आंखें नम होते हुए देखी मैंने। और जब ये सभा खत्म हुई, मैंने जाकर के लोगों से बात किया, तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से उन्होंने उस क्षण को याद किया, तो जैसे लगा कि सब लोगों को सब अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। और वो एक बहुत ही एक अनूठा सा पल था, एक ऐसा पल था कि लोगों को वो हमेशा याद रहने वाली बात थी। जो कुछ वहाँ पर अमरीकी नागरिक थे, जो विदेशी जो कुछ महिलाएं थीं जो सुन रही थीं उनकी बात को, उनसे मैंने बात की, तो उनका भी कहना था कि उन्होंने कहा कि एक बहुत ही मूविंग सा सी बात उन्होंने कही, और जो कि पूरी दुनिया पर लागू होती है कि जब अगर आप अपनी माँ की बात करते हैं, और जो अगर उन्होंने इतनी मेहनत की हो आपको पाल पोस कर बड़ा करने में। जहाँ तक जो हम अगर बात करें कि जो ठोस बातें जो वहाँ हो रही थी, तो सोशल मीडिया पर जब मार्क जुकरबर्ग जब उन्होंने सबसे पहले सवाल किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने उसके बारे में ये कहा कि अच्छे शासन में कितनी मददगार हो सकती है सोशल मीडिया, ये उन्होंने अब जाकर के जाना है। उन्होंने कहा कि पहले 5 सालों का परिणाम आप जब आता था आपको चुनाव के समय में कि आपने कैसा परफॉर्मेंस किया, अब हर 5 मिनट में आपको रिपोर्ट मिलती है और खुद को सुधारने का भी एक मौका मिलता है। एक बात और उन्होंने कहा कि रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन जो अब मिल पाती है, उसकी वजह से आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जो मददगार होगा। 2 और बातें उन्होंने कही कि जो भारत की समस्याओं की बात करते हुए, कि हमारे पास अभी मुख्य रूप से 2 समस्या है, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। और इसमें उन्होंने एक तरह से जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनके साथ जो भागीदारी की उम्मीद की, और जिसका एक तरह से जकरबर्ग ने उन्होंने भी उसकी तरफ इशारा किया।
आलोचना ये हो रही है ब्रिजेश की, जो नेट न्यूट्रलिटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो नहीं उठाए गए, महत्वपूर्ण सवाल नहीं उठे, और रेटरिक एक तरीके से कहें ज़्यादा था। इस बारे में लोग क्या कह रहे हैं और आपका अपना आकलन क्या है?
देखिए, 2 बातें हो रही हैं कि ये इस तरह की जो बातें हुई, ऐसा नहीं है कि बंद दरवाजों के पीछे इन सब पर बात नहीं हुई होगी, लेकिन ये जो मंच था एक तरह से जुड़ने का मंच था चारों तरफ से, और बहुत ही जो तीखे तीखे सवाल भी पूछे जा रहे थे। जो एक बेंगलोर में अमेरिका से गए हुए जिन्होंने babajobs.com की शुरुआत की, उन्होंने पूछा था कि पेस का जो रिफॉर्म्स का जो पेस है वो बहुत धीमा है, और उस पर उन्होंने बात की प्रधानमंत्री मोदी ने कि स्कूटर को मोड़ने में बहुत कम वक्त लगता है, लेकिन ट्रेन चला रहे हो तो उसको मोड़ने में आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये सब जो बातें थी, एक तरह का एक पॉजिटिव मैसेज देना था इस मंच पर कि भारत बिजनेस के लिए खुला हुआ है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करने की जो आसानी होती है, उस मापदंड पर भारत 140वें नंबर पर है 189 देशों की लिस्ट में। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम जो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम कितने ऊपर पहुंचे, तो एक तरह की जो सच्चाई थी उसको स्वीकार भी वो कर रहे थे, लेकिन उसको एक पॉजिटिव दिशा देने की कोशिश थी कि आने वाले दिनों में बेहतर दिन होने जा रहे हैं। तो जब मेरी कल विवेक वाधवा जो है यहाँ पर उनसे बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि देखिए, जो खास करके जो कुछ संवेदनशील मामले हैं कि जिसमें गूगल फेसबुक वगैरह जब इंटरनेट प्रदान करने के मुफ्त में प्रदान करने की बात करते हैं, तो भारतीय कंपनियों को ये गवारा नहीं होगा, क्योंकि उनका डेटा प्लान फिर कौन खरीदेगा, एक वो बड़ा मुद्दा है। तो जाहिर है इन सब बातों पर बंद दरवाजों के पीछे बात हुई होगी। जब वो गूगल गए हैं आज ही, तो गूगल में ऐलान किया गया है कि अगले हफ्ते गूगल एंड्रॉयड सिस्टम्स पर 11 और भाषाओं में आप एंड्रॉयड सिस्टम्स पर टाइप कर सकेंगे। 500 रेलवे स्टेशन्स पर मुफ्त में इंटरनेट मिलेगा, जिसमें से कि 100 बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन्स हैं भारत के, जहां पर लगभग 1 करोड़ पैसेंजर गुजरते हैं, और वहां बताया जा रहा है कि बहुत ऊंचे दर्जे की जो स्पीड होती है, हाई स्पीड इंटरनेट होगा, जिसमें वीडियो स्ट्रीमिंग भी हो सकती है। तो ये सब जो बातें हैं, तो एक तरह एक दूसरे
लगता है ब्रजेश से हमारा संपर्क टूट गया है, और जो आवाज़ें आप पीछे सुन रहे थे वो सैप सेंटर में मौजूद हैं इस वक्त ब्रजेश, जहां नरेंद्र मोदी स्थानीय भारतीय हैं उनको थोड़ी देर में संबोधित करने वाले हैं। हमारी कोशिश होगी अगले कार्यक्रम में हम वापस ब्रजेश के पास वापस लौटें। आज के कार्यक्रम से पहले नरेंद्र मोदी और सिलिकॉन वैली के 5 दिग्गजों ने एक मंच पर बैठकर डिजिटल इंडिया पर मंथन किया था। इस कार्यक्रम के बाद ब्रजेश उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी नेता राम माधव से बात की।
बिल्कुल पहली बार ऐसा भारत के इतिहास में हो रहा है। भारत में टेक रिवोल्यूशन लगभग 80s में शुरू हुआ, राजीव गांधी ने प्रयास किया, बट जिस स्केल पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको आज लेके गए हैं, इट्स अनपैरेलल्ड। दुनिया का IT कैपिटल माने जाने वाला सिलिकॉन वैली के सारे टॉप लीडर्स आज मंच पर भी थे, ऑडियंस में भी थे, तो ये बताता है कि पूरा IT वर्ल्ड आज दुनिया भारत की तरफ आकर्षित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के डेवलपमेंट प्लान्स में उनके साथ सहयोग देने के लिए तैयार है। दिस इज डेफिनेटली ए गुड न्यूज फॉर इंडिया।
जो आपने सुना टेक्नोलॉजी के लीडर्स से यहाँ पर, क्या इसी तरह की बात आप लोग सुनना चाह रहे थे?
देखिए, जनरली प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का जो विजन है अबाउट इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, इंडियाज डेवलपमेंट, इसको लेकर एक बहुत बड़ा एंथुजियाज्म दुनिया भर में है। आज यहाँ टेक्नोलॉजी लीडर्स, आईटी मेजर्स यहाँ मिले हैं प्रधानमंत्री से। उन्होंने भी वही बात का परिचय दिया कि दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू कनेक्ट विद इंडिया, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में भागीदार बने, इसके लिए वो भी उत्साह से आगे आने वाले हैं। यही परिचय उन्होंने दिया। कुछ लोगों ने तो मंच पर से इन्वेस्टमेंट की घोषणा भी कर दी थी।
प्रधानमंत्री का जो डिजिटल विजन है वो, और ये जो लीडर्स हैं वो, आपको लगता है एक ही धरातल पर है, एक ही पन्ने पे है?
बिल्कुल, भारत अपने डिजिटल फ्यूचर का एक स्पष्ट रोड मैप बनाकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के सामने भारत का ग्लोरियस डिजिटल फ्यूचर का रोड मैप है। हम पूरे IT विश्व को उस रोड मैप में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार को मदद करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम उनके स्ट्रेंथ समझते हैं, वो हमारी आवश्यकताएं समझते हैं, इसलिए इट विल बी ए विन-विन सिचुएशन फॉर अस।
ये थे राम माधव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में भारत के विकास की संभावनाओं पर बयान दे रहे हैं, तो उसी वक्त भारत में विरोधी दलों के नेता उनके दौरे और उनके नारों पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेक इन इंडिया से पहले मेक इंडिया जरूरी है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री CM पद का उम्मीदवार खोजने अमरीका गए हैं। एक रिपोर्ट के साथ अमल चौधरी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के नारे की कामयाबी में यकीन नहीं है। केजरीवाल का कहना है कि मेक इन इंडिया के नारे के साथ पूरी दुनिया में घूमने से इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि पहले मेक इंडिया यानी देश को तैयार करने की ज़रूरत है। देश और देश के लोग तैयार होंगे तो निवेश खुद आएगा। केजरीवाल ने कहा,
मुझे लगता है कि पहले हम मेक इंडिया करें। अगर हम देश को बना लेंगे तो मेक इन इंडिया तो अपने आप ही हो जाएगा। मेक इंडिया से मेरा मतलब है, अगर हम अपने लोगों को शिक्षा दें, अगर हम अपने लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दें, अगर हम उन्हें सुरक्षा दें, अगर हम न्याय व्यवस्था अच्छी करें, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें और इस देश के लोग तैयार हो जाएं, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर लाइन लगा के खड़ी होंगी और गिड़गिड़ाएंगे आपके सामने और कहेंगे कि हम देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
केजरीवाल ने बयान उस वक्त दिया है जबकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया में वैश्विक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर चुटकी ली है। लालू ने ट्विटर पर लिखा कि बिहार के लिए CM पद का NRI उम्मीदवार खोजने अमेरिका गए हैं मोदी, क्योंकि बिहार में तो कोई काबिल चेहरा इनके पास है नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव दोनों के बयानों पर पलटवार किया है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने BBC से कहा कि केजरीवाल को मेक इंडिया की बात करने से पहले दिल्ली की दशा सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा,
एक व्यक्ति जिसको दिल्ली की जिम्मेवारी है वो एक शहर नहीं संभाल सकता, वो मेक इंडिया का क्या बात करेगा? अगर आपको इतनी समझ है तो आप बताएं कि हेल्थ एजुकेशन की आपको समझ थी तो दिल्ली में डेंगू कैसे फैल गया? आपको ये सद्बुद्धि ईश्वर ने नहीं दी कि डेंगू फैल रहा है तो एलाइजर किट्स खरीद ली जाए ताकि डेंगू की टेस्टिंग हो सके? लालू जी से एक आग्रह जरूर रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास CM की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप बता दें कि आप क्या सीएम कैंडिडेट हैं बिहार के।
मीनाक्षी लेखी का कहना है कि प्रधानमंत्री दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं और स्थान ऊंचा करने में जुटे हैं।
ये रिपोर्ट थी अमल चौधरी की। बिहार में विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में असंतोष थम नहीं रहा है। सांसद आरके सिंह के बाद सासाराम सांसद छेदी पासवान ने भी टिकट बंटवारे पर नाराजगी जाहिर की है। वो अपने बेटे को टिकट न मिलने से नाराज हैं। उनसे बात की वात्सल्य राय ने।
सभी पार्टियों का नियम एक होना चाहिए। यदि आप किसी के परिवार को टिकट नहीं दे रहे हैं तो किसी के परिवार को नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोगों के परिवार को टिकट दिया गया और कुछ लोगों को काटा गया, ये बात ठीक नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी में किन नेताओं के बेटों को टिकट मिला है?
अरे अश्वनी कुमार चौबे के बेटा को मिला, सीपी ठाकुर के बेटा को मिला, नरेंद्र सिंह के दो दो बेटा को मिला। तो हम लोगों की भी चाह थे कि हम लोगों का बेटा को मिले। बेटा कोई एकदम शुद्ध रूप से राजनीति का आदमी है, 2004 से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा है। सारे पार्टी के लोग सराहना करते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, सोबर लड़का है, संगठन में अच्छा काम करता है, तो उसको मिलना चाहिए। तो यही बस मेरा शिकायत है और कोई खास बात नहीं है। हम पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे, पार्टी के उम्मीदवार भी जिताएंगे।
बाकी नेताओं के बेटों को टिकट मिला, रिश्तेदारों को टिकट मिला, केवल आपको ही क्यों छोड़ दिया गया?
अब तो ये पार्टी के नेता लोग बताएंगे क्या कारण है। दूसरी गलती है कि जहां कोई बेस नहीं है, रालोसपा का कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं बनता है, कम से कम हमारे संसदीय क्षेत्र में हमसे राय लेना चाहिए था। ठीक है, नेता लोग नेता होते हैं, नेता अपने ढंग से काम करते हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र के सांसद होने के नाते हमसे राय जरूर लेना चाहिए था, राय नहीं लिया गया।
तो आपसे राय नहीं ली गई, तो आपने अपनी तरफ से कोशिश की किसी तरीके से अपनी बात पार्टी तक?
बहुत प्रयास किए, कोई बात नहीं किया।
प्रदेश स्तर पर आपसे बात नहीं की गई या राष्ट्रीय स्तर पर? केंद्रीय
प्रदेश स्तर पर बात की गई, न राष्ट्रीय स्तर पर बात की गई।
ये थे छेदी पासवान। उधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतर जो नाराजगी चल रही है उस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक रैली में कहा,
ये बिहार का चुनाव है, आपको फैसला करना कि बिहार बिहारियों के द्वारा चलाया जाएगा या बाहरी लोगों के द्वारा चलाया जाएगा। एक तरफ है एकता और दूसरी तरफ है बिखराव, झगड़ा, झंझट। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो राजनीति में आए थे, बीजेपी में गए थे, उन्होंने खुल करके आरोप लगा दिया कि बिहार में भाजपा में किस तरह से टिकट बांटा जा रहा, कैसे चरित्र वालों को टिकट दिया जा रहा। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं।
ये थे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज सांसदों पर हमारे साथी वात्सल्य राय ने बात की भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन से।
देखिए, बीजेपी में एक टिकट के कई दावेदार हैं, क्योंकि हम जीतने वाली पार्टी हैं और इस वजह से एक सीट पर कई दावेदार लोग हैं और कई लोगों को टिकट नहीं मिलता है, और एक ही तरह के उम्मीदवार होते हैं। चुनाव करना आसान काम नहीं है, फिर भी बहुत ट्रांसपेरेंसी से सर्वे करा के कार्यकर्ताओं से पूछकर केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय किया है, और जो भी आरोप लगे हैं सब गलत हैं। इस तरह जिनको टिकट नहीं मिलता है वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है, मैं खुद केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ और इस नाते मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी कि कहीं भी टिकट बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया गया।
आरके सिंह तो कह रहे हैं कि अपराधियों को टिकट दिए गए हैं, पैसे लेकर टिकट दिए गए, ये तो बड़े गंभीर आरोप हैं।
उनके क्षेत्र में कुछ एलाइज के बारे में उनको कहना था कि आपराधिक छवि के व्यक्ति को दिया गया, लेकिन एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया गया है जिसकी आपराधिक छवि हो। कई लोगों के बारे में हम लोगों ने जांच की है, हमारे जो विरोधी हैं उन्होंने तो मुन्ना शुक्ला, धूमल सिंह जैसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार उतारे हैं।
शहनवाज जी, आपके विरोधी खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जब आपके गठबंधन के अंदर इतने अंतर विरोध नजर आ रहे हैं तो उनके चट्टानी एकता वाले गठबंधन का आप मुकाबला कैसे करेंगे?
चट्टानी एकता इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ कोई, लालू जी सरेंडर कर चुके हैं, मुख्यमंत्री वो बन नहीं सकते, और नीतीश कुमार जी के यहाँ और कोई नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस परेशान और बेजार है, कोई चुनाव लगातार डेढ़ साल से नहीं जीत रही, इसलिए वहां पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ वो अपने गठबंधन को चट्टानी एकता कह दें, लेकिन हम जानते हैं उनकी चट्टान खिसक चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो मजबूत है, सक्षम है, और वो हिसाब मांग रहा है कि आखिर पिछले 35 साल से, पहले 10 साल कांग्रेस, 15 साल लालू जी और 10 साल नीतीश कुमार, ये तीन पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी 420 महीने उन्होंने राज किया है, तो वो तीनों मिलाकर 420 महीने का हिसाब दें, और हम अपने 15 महीने का हिसाब जनता के सामने देने को तैयार हैं, जहां हम केंद्र में हुकूमत कर रहे हैं।
नीतीश कुमार जी ने एक और मुद्दा उठाया है, बाहरी का मुद्दा उन्होंने एक उठाया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? उनका कहना है गुजरात मॉडल बिहार में नहीं चलेगा।
नहीं, कौन गुजरात मॉडल बिहार में ला रहा है, वो खुद ब खुद ख्वाब में देख रहे हो। बिहार के अंदर बिहार का ही मॉडल है, और हम लोग बांग्लादेश से नहीं आए हैं। नीतीश कुमार जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन, नंद किशोर यादव, ये राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद, ये सब लोगों से उनका मुकाबला है। हम न गुजराती हैं, न हम बांग्लादेशी हैं। उनको ध्यान रखना चाहिए, हम भी बिहारी हैं। अपने आप को ही 24 कैरेट का बिहारी मानकर वो समझते हैं कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार, ये नहीं है। बिहार का मतलब सुशील मोदी भी है, शाहनवाज हुसैन भी है, नंद किशोर यादव भी है।
ये थे भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। और अब जानते हैं आज के दिल्ली से छपने वाले अखबार क्या कह रहे हैं। समीर आत्मज मिश्र स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। समीर,
विनीत अखबारों में नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की चर्चा कहने की जरूरत नहीं है, सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है। लगभग सभी अखबारों की लीड खबर वही है, अलग अलग इसमें जो शीर्षक है, हेडिंग है, उसके जरिए अखबारों ने छापी है खबर। जनसत्ता लगता है इतिहास में बेजोड़ है डिजिटल इंडिया मोदी, और दैनिक भास्कर ने थोड़ी अलग सी हेडलाइन दी है, लिखता है अखबार की मोदी को इमोशनल लाइक्स, फेसबुक दफ्तर में जकरबर्ग ने मां पर सवाल पूछा तो मोदी का गला भराया। दैनिक भास्कर ही लिखता है कि टॉप टेक सीईओ के मोदी से वादे, एप्पल लगाएगा प्लांट, गूगल 500 रेलवे स्टेशनों पर देगा फ्री वाईफाई सुविधा, माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा 500,000 ई गांव। तो लगभग सभी अखबारों में ये खबर प्रमुखता से छपी हुई है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो वीरभद्र सिंह, जिनके यहाँ कल सीबीआई के छापे पड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में, उनके बारे में दैनिक जागरण की एक खबर है कि अपने ही जाल में फंस गए वीरभद्र, एलआईसी एजेंट के खाते में जमा 5 करोड़ सेब के बाग की आमदनी साबित करना चाहते थे, और यही वजह है कि इसी मामले ने उनको लपेटे में ले लिया। हिंदुस्तान अखबार की बात करें तो हिंदुस्तान लिखता है कि सांसदों के लिए नए वेतन आयोग का प्रस्ताव तैयार। दूसरे अखबारों में भी ये खबर है प्रमुखता से। अखबार लिखता है केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन भत्ते तय करने के लिए 3 सदस्यीय वेतन आयोग की पेशकश की है। सांसदों द्वारा खुद अपना वेतन तय करने की आलोचना को देखते हुए ये प्रस्ताव किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी। उसके अलावा एक खबर है अमर उजाला की। अमर उजाला लिखता है कि राहुल के खिलाफ बगावत के सुर तेज, कई राज्यों में 2 खेमों में बटी कांग्रेस। अखबार का कहना है कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस 2 फाड़ होने के कगार पर है, और ये इसकी वजह जो है वो है राहुल गांधी का नेतृत्व। मेक इन इंडिया से ज़्यादा अहम मेक इंडिया, ये अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका बयान है, जनसत्ता ने छापा हुआ है। सिविल सेवा परीक्षा पद्धति की होगी समीक्षा, ये खबर भी अखबारों में चर्चा में है। दैनिक जागरण लिखता है कि सिविल सेवा परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, पाठ्यक्रम और उम्र सीमा की करेगी समीक्षा, पूर्व आईएएस अधिकारी बीएस बसवान होंगे विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष। अखबार के मुताबिक इसमें सिविल सेवा परीक्षा के तौर तरीके, पाठ्यक्रम, योग्यता और उम्र सीमा जैसे मामलों की समीक्षा की जाएगी। और बात करें अगर दिल्ली की तो दैनिक भास्कर अखबार लिखता है कि राजधानी में 50 से ज़्यादा डॉक्टर डेंगू की चपेट में हैं। राजधानी में डेंगू पीड़ितों का इलाज करने वाले दिल्ली के कई नामी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के 50 से ज़्यादा डॉक्टर डेंगू की चपेट में हैं, और इसमें एहतियात के हाई कोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिया है कि एहतियात के इंतजाम किए जाएँ। मणिपुर के राज्यपाल सैयद अहमद का निधन, जनसत्ता अखबार ने यह खबर दी है। मणिपुर के राज्यपाल सैयद अहमद का रविवार सुबह निधन हो गया। वो मुंबई में एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, 73 वर्ष के थे।
शुक्रिया समीर आत्मज मिश्र आपका। और अब पाकिस्तान डायरी पेशकश वसुतुल्ला खान।
इस संसार का हर नज़रिया और धर्म अपने मानने वालों को आत्मा, बदन और आसपास की सफाई की तालीम देता है। इस्लाम में भी सफाई को आधा ईमान कहा जाता है, यानी खुद को और आस पड़ोस को साफ रखो। मगर जब जब इस पे अमल करने का वक्त आता है तो लोग बाग सब भूल भाल जाते हैं। जैसे बकरा ईद के मौके पे कुर्बानी तो बहुत शौक से होती है, मगर जानवर की आंतें और ओजड़ी उठाना सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी समझा जाता है, और सरकार भी नहीं सोचती कि लोगों को सड़क, गली या अपने दरवाजे पे कुर्बानी से रोकने के लिए हर इलाके में कुछ ऐसी खुली जगह ही बना दे जहां कुर्बानी हो सके और गंदगी ना फैले। मैं बचपन से देख रहा हूं कि बकरा ज़िबा किया, गोश्त घर ले गए और खाल और बकरे की ओजड़ी वहीं छोड़ दी। और इस गंदगी को उलांग के लोग जब एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं तो ये सीन देख के बस मज़ा ही तो आ जाता है। जब इन लोगों से कहा जाए कि हुजूर गोश्त के साथ साथ जानवर की ओजड़ी को भी तो ठिकाने लगाइए, तो ऐसे घूर के देखते हैं जैसे कुर्बानी से पहले बकरे को देखा जाता है। और जब बकरे की तरह मिनमिनाते हुए ये कहा जाए कि सऊदी अरब, यूएई और ईरान में आप ऐसे कुर्बानी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो कहते हैं कि फिर आप वहीं क्यों नहीं चले जाते, हम तो ऐसे ही बाप दादा के ज़माने से कुर्बानी करते आ रहे हैं और ऐसे ही करेंगे। ऐसे मौक़ों पे मोहल्ले के कई सियाने आपको समझाते भी हैं, अरे छोड़िए साहब, इन जाहिलों के चक्कर में ना पड़िए, एक तो ये गरीब हैं और फिर आपकी तरह पढ़े लिखे भी तो नहीं। अगर इन सियानों से कहा जाए कि भाई साहब, गली का कुत्ता भी पढ़ा लिखा नहीं होता और उससे ज़्यादा गरीब भी कोई नहीं होता, मगर वो भी बैठने से पहले दुम ज़रूर हिला लेता है, उस पे तुरंत जवाब मिलता है कि साहब आप बहुत मुंह फट हैं, आप जैसों के मुंह कौन लगे। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि भारत हो के पाकिस्तान, हम लोग बात बात पे अकड़ते हैं कि अरे मियां, जितने मज़ेदार पकवान हमारे हैं, गोरों को क्या पता कि अच्छा खाना किसे कहते हैं। ये पश्चिम वाले आज खुद को साइंस का गुरु समझते हैं, हालांकि मैथ्स और फिलोसफी तो उन्होंने हमसे ही सीखी थी। और जब बाकी दुनिया चीथड़ों में घूम रही थी तब ये उपमहाद्वीप सोने की चिड़िया कहलाता था। इन बाहर वालों को क्या पता सभ्यता किस जानवर का नाम है, आज बड़े महज़ब बने फिरते हैं। हूँ, लेकिन अगर उनकी सभ्यता के लेक्चर को बीच में टोक के बस इतना कह दें कि हुजूर आपकी महान्यता सर आँखों पे, पर आज़ादी के 68 वर्ष बाद भी उपमहाद्वीप की आधी आबादी सुबह ही सुबह खेतों में जाके और रेलवे लाइनों और सड़क के किनारे ही क्यों फारिग होती है, आज भी हर मोहल्ले की पिछली गली को गंदी गली क्यों कहते हैं, गरीब और कम पढ़ा लिखा साफ रहने की कोशिश करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी क्या। अब ऐसी अजीबो गरीब बातें करने वाले को लोग पागल, सनकी और हेड़ा ना समझें तो क्या समझें। हिंदुओं और मुसलमानों में भले हर बात पे सर फुटव्वल हो, पर इस बारे में पूरी एकता है कि आसपास को खुद से साफ नहीं रखना। भला ये क्या बात हुई कि गंदगी भी हम ही फैलाएं और साफ भी खुद ही करें। वाजिबा।
ये थे वसुतुल्ला खान। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेसबुक के मुख्यालय में मार्क जकरबर्ग के साथ फेसबुक चैट में कहा है कि वे भारत को 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। स्पेन में आज़ादी समर्थक दलों ने कैटलोनिया क्षेत्र में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। करीब 90% मतों की गणना हो चुकी है, जिसमें प्रमुख अलगाववादी गठबंधन को अब तक 135 सदस्यीय क्षेत्रीय संसद में 72 सीटें मिल चुकी हैं। अमेरिका यात्रा के आखिरी दिन पोप फ्रांसिस ने उन बच्चों से मुलाकात की जो ईसाई पादरियों के कथित यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुके हैं। अफगानिस्तान की सेना का दावा है कि उसके सैनिकों ने बीते दो दिनों में 130 से ज्यादा इस्लामिक स्टेट लड़ाकों को मार दिया है। खबरों के मुताबिक 85 लड़ाके रविवार को हुई झड़पों में मारे गए। संयुक्त राष्ट्र में चर्चा के बाद सीरिया संकट को सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज इसी मुद्दे पर अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने वाले हैं। मेक्सिको में एक जज ने 2 साल पहले हुए 13 लोगों के अपहरण और उनकी हत्या के लिए 3 लोगों को 500 साल से भी ज्यादा की सजा सुनाई है। बीबीसी समाचार।
समाचार सुना रहे थे समीर आत्मज मिश्र, स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने, मैं हूं विनीत खरे। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी 1 घंटे बाद विश्व भारती में।